کیسے کہ میں ایک بار گدھا بن گیا جب گندے جنم بھوگ رہا تھا، اور گدھا بھی اندھا ہو گیا، دھنی نے چھوڑ دیا. چلتا چلتا گاؤں سے کم دو تین میل کی دوری پر جنگل میں جا کے ایک نالے میں گر گیا. کسی نے نکالا کونا، اور سات دن میں دکھ پا کے بھوکا پیاسا میرے پران گئے. تو وہ دن مجھے یاد آؤں سے بھائی پرماتما میرے ہردے تو اترتا ہے کون. اس پرکار مہاراج جی بتاوے ہیں کہ اب اس کی تھوڑی سی بانی پرمان دیتے ہیں. سکھدیو ملا مہادیو بنکا، چوراسی کی مٹی نہ سنکا، اٹھوتر جنم گوری بھرمائی، شیو کو رونڈ مالا گللائی. اٹھوتر، ایک سو آٹھ، اکوتر، ایک سو ایک، یہ گنتی ہوتی ہے. اٹھوتر، اٹھوتر، ایک سو آٹھ. اٹھوتر جنم گوری بھرمائی، شیو کو رونڈ مالا گللائی. رونڈ مالا سر کی مالا گلے میں ٹانگ لیا کرتے تھے. ارد شریری دیوی گورا، اور جن کا کھیر بہا نہیں بہ رہا. ارد شریری یعنی پتنی کو آدھے دکھ سکھ کی کا حصہ مانتے ہیں، ارد شریری بولتے ہیں. ارنوکے اس کا بھی جنم مرن نہیں مٹا، بھگوان شیو کے ساتھ رہ کے. ارد شریری دیوی گورا، جن کا تھیر بیا نہیں بورا، نارد منی اپدیش بکھانا، اور گرجا سنو موکش پد گیانا. نارد منی نے اپدیش بتایا. سن ہے دیوی گورا مائی، اڑسٹھ تیرت تبر بین آئی، اور پنڈ پردھان کی ایک باری، اور کھلی نہیں وہ مکت دواری. کہتے ہیں اے ماتا، اڑسٹھ تیر تو میرے نا کتنی کو بنا لی، اور پنڈ پردان تیرے کتنی بار ہو لیے، پر تیرا موکس کا راستہ کو نہ پایا. رونڈ مالا شیو کے گل ماہی، سو دیوی تم جانو نہیں. یا تیرے سر کے رونڈ یعنی سر کی مالا بھگوان شیو کے گلے میں ہے، تو جانتی کو نہ. گریب رونڈ مالا شیو کے گلے، اور گرجا کے سرسیس، بھگتی درائی دیو کو نہ پرسیا جگدیش. تمرا دیوی روپ وشالا، شیو تو پیر رہے رونڈ مالا، اور پرلے سنکھ اسنکھوں جائی، امر کچ شیو کل کے ماہی. بھگوان شیو تو امر ہے، کئی پرلے ہو جائیں گی. اتنے پرلے ہوتی ہے، ایک مہا پرلے ہوتی ہے. پرلے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جیو جو ہوتے ہیں پرتھوی منڈل کے اور سورگ کے اور پاتال کے، یہ تینوں نشٹ ہو جاتے ہیں. یہ کئی بار نشٹ ہو جاتے ہیں. چوتھے یوگ جب آئے گا، انت ہوگا چوتھے یوگ کا، تو یہ سب نشٹ ہو جائیں گے. کچھ بھکت، کچھ سنت بچیں گے، جو ہنس آتما اس سمے بھی تھوڑی بہت بھکتی مارگ پر لگی ہوئی ہوں گی، وہ بچیں گی، اور ساری پرتھوی پانی ہی پانی ہو جائے گا. اس پرکار اس کو پرلے کہتے ہیں. اور مہا پرلے ہوتی ہے جب شیو برما وشنو سب سماپت ہو جاتے ہیں، اس کو مہا پرلے کہتے ہیں. یہ پرلے پرلے سنکھ اسنکھوں جاہیں، امر کت شیو کل کے ماہی. کہ سنکھ اسنکھوں یا پرلے ہو لیں گی، بھگوان شیو اتنا مرے نہیں، امر ہے. ابھی آپ کو سویرے بتایا تھا کہ ان کی آیو سب سے زیادہ ہے. برما سات برما مر جاویں، اور ایک برما کی آیو سات لاکھ بیس ہزار چتریگ اتنی ہوتی ہے. اس سے سات سے گنا کرے وشنو کی، اس سے سات سے گنا کرے پھر شیو کی، اتنے میں برما کتنے چتریگ ہو لیں گے. اور ہر چتریگ میں ایک بار پرلے ہوتی ہے. چوتھا یوگ جب انت ہوگا، ایک بار تو نیکلنک نام کا ایک اوتار آئے گا. دسواں اوتار ابھی آیا نہیں ہے، وہ دسواں اوتار پھر آئے گا. اور وہ کون ہوگا؟ گریب داس جی مہاراج کہتے ہیں وہ راجہ ہریشچندر ہوگا. وہ دسواں اوتار بن کے آئے گا، اور اس میں اتنے کرتگنی جیو ہو جائیں گے منس کہ دھرتی پہ رام نام کی چرچا نہیں رہے گی، اور پاپ کرموں کی گنتی نہیں رہے گی. سارے پرانی سارے کم زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ فٹ کے ہو جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں رہیں گے اونچائی ان کی. پانچ سال کی لڑکی کا بچے ہویا کریں گے، अब 5 साल की लड़की का बच्चा होगा वो कितना पहलवान होगा, चूहा जो डरे, और कहते हैं बिल खोद कर आ करेंगे। ये गरीब दासियां ने आज से आगे आने वाली लाखों वर्ष के पहले की बात यहां में लिख रखी है। अब आप देख रहे हो जो पहले लड़के और लड़कियां, आदमी और औरत इतनी ठाडे ठाडे हुआ करते, को नौ नौ फुट के दरवाजे हुआ करते पहले, अरे साढ़े छह फुट के उड़ गए हैं, उनमें तलेगा कितने निकल जाओ। अब कितनी कमी होगी बच्चों ने देख लो उनके शरीर में, आज से पहले के बच्चों के और मनुष्यों के शरीर देखो। तो अभी तो ये शुरुआत है कलयुग की, सारा थोड़ा सा उम्र गई है इसकी कलयुग की, और अंत होगा जब लाखों वर्ष के बाद, उस समय ऐसी हालत युग की हो जाएगी। उस समय ये राजा हरिश्चंद्र जो स्वर्ग के अंदर है वो दसवां अवतार बन का होगा। इन सब उनकी कहते हैं 7 हाथ की खड़ग होगी, 7 हाथ की, और फिर एक मारेगा और 50 स्थान एक बसा नीसी काटेगा। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्री जब अभिमानी ज्यादा हो गए थे और फरसे गए लैनो नाड़ काट दी थी, किसी का हथियार भी ना उठा था। इसी प्रकार वो अवतार शक्ति अपनी विशेष शक्ति के युक्त आता है, वो दूसरों को निष्क्रिय कर देता है। ऐसी हालत उस युग में होगी। तो परले संख असंख्यो जाही, अमर कच्छ शिव कल के माही, अमर कच्छ शिव है अनुरागी, और तुम देवी गौरी दिल तैगी। तुम्हारे मन में परमात्मा शिव ने आपको दिल से त्याग रखा है। किस प्रकार? उन्होंने के प्यार नहीं करता, लेकिन इस मंत्र के देन जोगी तो हुई को ना, आपने इतनी श्रद्धा नहीं बनाई। मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प हो तेरी काया, महादेव देवन पति देवा, जा की करीना गौरी सेवा। एक तो सेवा पति रूप में और एक सेवा गुरु रूप में। गुरु रूप में जो सेवा होती है वो ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक मान के वो भाव एक भिन्न होता है, उसमें विकार रहित होता है, एक परमात्मा में आस्था होती है। महादेव देवन पति देवा, जाकी करी ना गौरी सेवा, ये नारद जी पार्वती माता को विधिवत शास्त्र की रीति बता रहे हैं। कर बंधन कर शीश निमाओ, तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। ने बोलिया हाथ जोड़ के और चरणा में पड़ जाना उसके, भगवान शिव के, और जब जाकर बात बनेंगे। कर बंधन कर शीश नमाओ, नमाओ माने नमन करो, और तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। और पहले तो नखरे से तो बोलती थी, आओ थी जब जाके हम कहते आज सब्जी ना लाए, छोरे के जूते ना लाए, घर पाछे बड़े, पहले हम ये जवाब करें। और उस दिन एक सिद्ध आते ही और चरणा में गिर गई। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, और ताते भेद कहूं गौरी माता, चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा, कमल रूप देवी दिल की न्या। नारद मुनि फिर उपदेशी थी न्या, कमल रूप, कमल का पत्ता पे कोई धूल नहीं लगती, कमल के फूल पे कोई कीचड़ नहीं लगता, और ना पानी डटे, इतना कोमल होता है, इतना निर्मल होता है। कहते हैं कमल रूप देवी दिल की न्या, कति निर्मल होगी, इतनी आत्मा उसमें लगन लगी मालिक में कि इब कान दे भगवान ने, मैं तो चरण पकड़कर छोड़ू ना को न। कमल रूप देवी दिल की न्या, और नारद मुनि उपदेशी चीन्या, जद आए शिव मंगल अवधूता। अवधूत कहते हैं जो केवल एक कपड़ा लंगोर अपना तन पर रखे, मर्ग छाला सी, और बाकी शरीर से नंगा रहे, उसको अवधूत कहते हैं। तो वो कोई भी हो, ऐसी स्थिति में जो संत रहता है उसको अवधूत नाम से जाना जाता है। जब आए मंगल, मंगल कहते हैं घर में, जब आए शिव मंगल अवधूता, और देवी चरण लिए सतरूपा, सतरूपा यानी सच्चे भावत है, और कतिनो अंतकरण की पुकार के साथ और चरणा में गिर जाती है। देवी चरण लिए सतरूपा, चरण पकड़ रोवत है बाला, और ये मोरे शीश की रुणमाला। चरण पकड़ कर वो बालक, वो बाला, वो लड़की रोन लग जाती है, देवी पार्वती। मोसे भक्त दुराई देवा, मैं जानी नहीं तुम्हारी सेवा, आपने मेरे से यह भक्ति छुपा कर रखी, और मैं आपकी इस सेवा को समझ नहीं पाई, और इसी कारण से मुझ पापनी को आपने ये अनमोल मंत्र नहीं सुनाया। जब अपने आप को वो कोसन लागी, रोने लगी, तो शिव जी ने कहने लगे आज मैं नाम दूंगा तेरे को। मोसे भक्ति दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निजदामी, मैं अबला हूं बारी बाड़ा भोरी अकबर नमाओ अमली डोरी। मैं बाला हूं अबला हूं, अबला माने कमजोर सी, मैं अधीन हूं आपके। मैं अबला हूं बाला भोरी, मैं बोली बाड़ी लड़की थी महाराज जी, मैंने इन बातों का ज्ञान नहीं था। मैं अबला हूं बाला भोरी और पार निभाओ हमारी डोरी। पूर्व जन्म की कथा सुनाओ और मूल मंत्र हमको शिव गौरहो। गरीब मूल मंत्र महबूब का, उस परम पिता परमात्मा का नाम यानी शिव से ऊपर जो भगवान है उसका देवी या पार्वती कह रही है। मूल मंत्र महबूब का ईस सुनाओ मोही, जुगन जुगन पातक कट ये छूट दिल द्रोही। भूल पड़ी बहु सागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। मन के बेरा था पहले रे सुहावन अनमोल चीज ने हैं। भूल रही बहु सागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शिव शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विदाता। शिव जी उसके सिर पर रोए थी ना नीचे अंतरण करके, सिर करके शरणा में उसका सिर पकड़कर ऊपर बैठाया। अक बात बता, ये तेरा ज्ञान तक होना, ये कौन उपदेशी मिला विधाता, अक तेरे तो ये अनमोल बात कौन बताएगा जो तेरे समझ में आएगी। और ना तन्नर कौन मना ले, कोई समय आता है परमात्मा जो मेर करें और पिछले संस्कार उदय हो जाए, एक बात ठेस पहुंचा जाती है इस प्राणी का और जीवन बदल जाता है। सत्संग का इतना गजब प्रभाव उससे, सत्संग दो प्राणी बैठ के भगवान की चर्चा करते हैं वो भी सत्संग कहलाता है। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा। ये तेरी बुद्धि की बात तक हो ना जो आज बोलने लग रही है, आप ये बताओ आपको कौन मिला। गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घन नामी। नारद मुनि उपदेश समोदम, की ना ज्ञान ध्यान परमोदम। नारद जी मिले थे, उन्हें मेरे को ये ज्ञान सुनाया था। शिव समर्थ बोलते हैं जब ही, गौरी ज्ञान सुनाया तब ही। कोट कल्प पर ले जुग बीती, ज्ञान दान सब ही पर चीती। तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। अब तुम्हारे मन को नारद मुनि ने डाइवर्ट कर दिया, इसको बदल दिया हमारी तरफ, इस परमात्मा के पानी की तरफ। और अब मैं तुझे वो मंत्र सुनाऊंगा। बड़खंड चालो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमरी वाणी। बड़खंड चालो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमरी वाणी। जब शिव को कर से लाई तारी, उड़गे पंछी नर और नारी। जब भगवान शिव ने ऐसे हाथ से, कर माने हाथ, कर से लाई तारी और उड़गे पक्षी नर और नारी। नर मादा सभी भाग्य वहां थे। जहां एक सूक्या तरवर ताक्या, शिव को आसन था वहां रखा। तरवर माने पेड़, और सूखा जिसके पत्ते ना हो, डाली डाली खड़ी हो। तावा सूखा तरवर ताक्या, ताक्या माने देखा। ये महाराज जी ने ऐसे डंकी वाणी लिख रखी है, बस थोड़ा ऐसे अक्षरों को एक बार समझ लेना आनंद सान लग जाता है। तावा एक सूखा तरवर ताक्या, शिव को आसन तावा रखा। जहां एक गंध अंड तिस्माही, जिस जानत है समृत साई। उसमें एक अंडा गंदा पड़ा हुआ था। जोग असंग कल्प भरम आया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब उस अंडे का, उसमें जो जीव उड़झा पड़ा था, जब तक वो अंडा सूख के कति मिट्टी नहीं बन देता, इतने वो प्राण, वो जीव सुखदेव का उस अंडे में रहता। तो कहते हैं कोई पिछला जन्म कोई पूर्वला आया, पछले बिरणा कितने बूंदे कर्म भोग दिए थे, हमने भी करा कितनी बार भोगे। अब किसे जन्म में भगवान ने हमारे ऊपर मेहर बख्शी, या हमारे कोई ऐसे पुण्य अड़ गया, गए कोई संत फेट गया होगा, और उस संत ने हमारा ये सारा ही दिमाग बदल दिया होगा, और हमारी भक्ति का मार्ग उस परमात्मा के प्यारे संता में अर्पण हो गया होगा, और हमने उस जन्म में अपनी वो भक्ति का बीज बोया, वो बीज बोया, तो आज हमारे सामने वो बीज का प्रभाव आज भी है। हो सकता है वो एक जन्म में फल पूरा हुआ पौधा, हो सकता दो भी लाग जाए और तीन भी लाग जाए और चार भी लग जाए, पर होगा पूरा ही। जिसमें ये बीज प्रवेश नहीं हो लिया किसी भी युग में, वो प्राणी सत्संग में नहीं आ सकते। और आ भी गए तो सत्संगी बातों को स्वीकार ही नहीं कर सकते उनमें, क्योंकि सुखदेव जैसे एक ही सत्संग में और महापुरुष बन गए, इसी प्रकार सत्संग जहां तक भी ये वाणी जा रही है परमात्मा की, पशु पक्षियों पर भी काम कर रही है। हमने नहीं ज्ञान इन बातों का, और ना उन अनजानों ने ज्ञान। ये बंदी छोड़ की वाणी जहां पर भी जा रही है, जब एक शिवजी की वाणी के उन्होंने एक प्रवचन ही किया था, पार्वती को बता रहे थे कि भगवान ऐसे मिलेगा, तू यहां ध्यान लगा, ऐसे कर, ये नाम जप किलियम कर, ओम कर, सोहम कर, यही मंत्र सुनाए थे पार्वती को भगवान ने, और ये तीन लोक के सबसे उत्तम मंत्र हैं। इनके सुनन मात्र थे वो गंदा अंडा भी पार हो गया, और ये तो पूर्ण भगवान की वाणी, ये तो उस परम पिता परमात्मा सत्पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान की वाणी है, ये तो पशु और पक्षी और पौधों पर भी काम करती है, जहां तक ये बंदी छोड़ की वाणी उनके कानों में पड़ती है, उनके ऊपर जाती है। संक जोग असंकल्प भ्रम आया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया, योग असंख असंख योग तक कल्प भ्रम आया। कल्प होता है जिसमें एक कल्प कई अरबों योग का होता है, और जब ये महाप्रलय होती है उस कल्प के बाद फिर दोबारा सृष्टि रची जाती है। तो नोके जोग असंख कल्प भ्रमाया, हम सारे करा कई युगों तक भ्रम लिए, और वो सुखदेव भी पहले ऐसे ही बन रहा था, और फिर नोके पूर्व जन्म कोई अच्छा आया, कोई पिछला जन्म बढ़िया उसके आगे अड़ गया, और जिसके कारण उन्होंने वो पार्वती को दिया हुआ ज्ञान भी उसके ऊपर प्रवेश कर गया और उसके शरीर में कुछ समय का अमृतव दे दिया। अब तुम सुनो गौरी मोरा ज्ञान ना, आसन मुख कर ईस कुट ईस कर कूट ईशाना। अब कूट कूट कहते हैं दिशा को, ईस दिशा, जैसे ना चार कूट दस कूट, और ईशान कूट होती है उत्तर और पूर्व के बीच की जो स्थान है, कहते हैं इस साइड में, उत्तर में भी नहीं पूर्व में भी नहीं, इसके बीच में जो एंगल बनता है कहते न्यून जान करके बैठ। अब तुम सुनो गौरी मोरा ज्ञाना, आसन मुख करे कूट ईशान, आसन पदम लगावो गोरा, मेर दंड सोदा कर बोरा। आसन पदम सोले हाथ का, सोले पैर का पंजा, ओली जांग पे साथल पे, और ओले का यानी बाएं का पैर को पंजा जो है दाएं की साथल पे, इसको कहते हैं पद्मासन। आसन पदम लगाओ गोरा, मेर दंड सोदा कर भोरा, और इस रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, ऐसे बैठ जा, और ईब मैं तुझे वो, क्योंकि ऐसा करने से हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ कमल बने हुए हैं, उन कमला में नरे नरे परमात्माओं की स्थितियां हैं, मूल कमल में गणेश जी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ ये कमल बने हुए हैं जैसे आंतड़ी सी होती है, और उससे चार उंगल की दूरी पर ऊपर पार्वती और ब्रह्मा और सावित्री का कमल है जिसको स्वाद चक्र कहते हैं। जैसे यह सुंडी है नाभि, नाभि के सामने और रीढ़ की हड्डी के भीतर की तरफ, यहां पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी का कमल है, ये स्थान है उनका, जैसे टेलीविजन में चैनल होते हैं, और जिस भी चैनल का आप वो ऑन करोगे वहां की प्रक्रिया जो हो रही है उस स्थान पर आप उस चैनल में देख सकते हो। इसके बाद हृदय कमल है, हृदय कमल ये दोनों नितंबों के बीच का स्थान, ये इनके यहां बीच में, और यहां रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, यहां पर भगवान शिव और पार्वती का अपना मूल स्थान है जो उसमें वो चैनल देख सकते हैं, अपने कार्यक्रम को स्वयं भी देख सकते हैं। इसके बाद ये कंठ कमल है जो ये स्थान है, इसके भीतर यहां नहीं, ये जो रीढ़ की हड्डी यहां पर मोड़ खाती है, इस मोड़ के साथ अंदर की तरफ यहां पर एक कमल है जिसमें यह आदि माया सेरा वाली आदि माया रहती है जिसको अध्या कहते हैं, अविद्या माई भी कहते हैं। इसके बाद कहते हैं अंदर जाती है एक बारीक सी नाड़ी, वो जाकर के एक दो दल का कमल है त्रिकुटी में, वहां खुलती है जाकर, उसके बाद उसके त्रिकुटी से कई रास्ते होते हैं, एक जाता है निरंजन की तरफ जो शयन सरार कमल में जाए योगी जाते हैं। तो यहां बता रहे हैं आसन पदम लगाए करे आसन पदम लगाओ गोरा मेर दंड सोदा कर भोरा। ऐसा करने से अंदर के कमल अपनी स्थिति जैसे ऐसे मुड़ गई है उंगली ऐसे हमारी हड्डी मिड़ गई तो यहां पर वो जो बने हुए हैं वो कमल वो नीचे न हो गए दबगी वापस में और ऐसा करने से वो अपनी स्थिति पर जैसे यहां पर है नोके में चमकेंगे नहरे नहरे दिखाई देते हैं यहां पर ऐसे होने तक और फिर उनमें आंट नहीं बनती। अब तो नाड़ी मुड़ी हुई है जैसे पाइप में पानी डाल रखा और न्यू मुड़ जा आगे छरक नहीं सकता वो वहां जय बंद हो जाता है। इसी प्रकार इसको ऐसे कर दे और आप चल पड़ेगा तो ऐसे कहता है सीधा बैठो और फिर मैं बताऊं उस मंत्र का जाप करते रहना और साथ में वो जो कमल बताऊंगा उनमें क्या क्या रंग है और कैसी उनकी पंखड़ी है उनमें तू उस मंत्र का जाप करती करती उस सूरज के द्वारा उसमें प्रवेश कर जाना उसके बाद आगे चलना ये सारी बता रहे हैं। जोग असंक पर कल्प भरम आया पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब तुम सुनो गौरी मोरा ज्ञाना आसन मुख कर कोट ईशाना आसन पदम लगाओ गोरा मेर दंड सोदा कर भोरा। ग्रीब आसन पदम लगाए करे भंवर चढ़ाओ सुनने अनहद नादु बजे ही तहां लगाओ धुन। अंदर फिर हर कमल में आवाज होती है हर कमल में धुनात्मक शब्द है और नौके उन पर वो ध्यान लगाती चलना और उस नाम का जाप नहीं छोड़ना। चंद्र लगन में सुरत सुलगाओ सूरज सुर को बंद खमाओ गौरी आज गणेश मनाओ किलियम किलियम ध्यान लगाओ। अब कहा ना चंद्र लगन में सुरती लगाओ और सूरज सुर को बंद खमाओ। कैसे कहा कि ये तो है चंद्र ये नाक औला नाक को चंद्र नाड़ी कहते हैं ईला को और पिंगला गर्म है इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं इसको तो बंद कर ले हाथ से। ये प्रणाम का परिभाषा बता रहे हैं प्राणायाम कैसे करें इसको बंद लगाओ और इसमें वो मंत्र करती हुई और सांस लो। इतनी आसानी से सांस लिया जाता है कि यहां पर कोई धागा कर देना न्यू और सांस लेती वो धागा हिलना नहीं चाहिए इतना आसानी से सांस लो और फिर इसके द्वारा वापस ले आओ इसको बंद कर लो ऐसे ले गए इसी से फिर वापस लो और उस धागे को फिर यहां रखो वो हिलना नहीं चाहिए वापस ले छोड़ जब भी नहीं ले ये फिर वापस इसमें इसी प्रकार फिर छोड़ो। ये एक प्राणायाम हो जाता है ये आपके लिए नहीं है ये योगी पुरुषों के लिए हमारे लिए केवल नाम का मंत्र है। मैं सिर्फ ये महाराज बताना चाहते हैं कोई नो ना सोचा गरीबदास जी एक अनपढ़ आदमी था और यू के जाने योग के बारे में बंदी छोड़ने इन कथाओं के माध्यम से अपना पूर्ण जानकारी दे दी कि मैं कौन सकती थी। यहां क्या कहते हैं चंद्र लगन में सुरत लगाओ सूरज सुर को बंद खमाओ सुर जो सांस आता है इसको बंद करो। गौरी आज गणेश मनाओ किलियम किलियम ध्यान लगाओ प्रथम मूल कमूल को जानो चतुर पंखड़ी लाल बखाण। ओए आप एक तरफ तो पंतांजलि योग देख लो उस पंतांजलि जी ने सिर्फ एक योग साधना करके केवल सहस्रार कमल तक का ज्ञान प्राप्त किया था हजारों वर्ष में और ये परमात्मा गरीबदास उस पंतांजलि योग का दाना दाना गिन रहे। प्रथम मूल कमल को जानो रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है नीचे की तरफ इससे दो उंगल ऊपर वहां कहते हैं चार पंखड़ी का एक कमल बना हुआ आंतड़िया का बहुत बारीक बारीक पत्ती है और उसमें कहते हैं गणेश जी का वास है उसकी लाल पंखड़ियां और चार पंखड़ियां हैं। प्रथम मूल कमल को जानो चतुर पंखड़ी लाल बखानो दूजे स्वाद चक्र को देखो सेतवर रंग सुरत विवेको। दूसरे यानी स्वाद चक्र इससे चार उंगल ऊपर न यहां पर सावित्री ब्रह्मा जी का स्वाद चक्र है और उसमें छह पंखड़ियां हैं। सठ पंखड़ी प्रीत परेवा तहां बसत हैं कंदरप देवा। छह पंखड़ी सठ ये संस्कृत का शब्द है सठ छे सठ पंखड़ी प्रीत परेवा, वहां बसता है कंदरप देवा। तावा हरा हरी धुन होई, तावा नाम सुमरियो सही। अब सुन नाभ कमल सुरतालम ओम मंत्र ओम जामे ओम मंत्र कमालम। स्वाद चक्र में के अंदर प्रवेश करने का ओम मंत्र है। जावा अष्ट पंखड़ी राजे है ब्रह्मा सावित्री तहां विराजे। ऊपर मनसा कमल मुरारी जावा विष्णु नाथ त्रिपुरारी। जावा लक्ष्मी शक्ति विराजे तावा हरियम हरियम राजे। कि वहां पर इस नाम का अपन जाप करना है, भगवान विष्णु के यानी कमल में जो प्रवेश करेगी। अब सुन हृदय कमल कमालम जावा द्वास दल का है ख्यालम। अब हृदय कमल दिखाऊं तो मैं अपनी शक्ति दिखाता हूं। आपने के दिखूं मैं या एक पति रूप में, मेरा असली स्वरूप कहां है मैं वो दिखाता हूं। अब सुन हृदय कमल कमालम जावा द्वादश का है ख्यालम। जावा शिव शक्ति वीराजय सोहम नाद आनंद गाजय। कि उसमें सोहम मंत्र का जाप कर जहां शिव भगवान की यानी स्थान है। ऊपर षोडश कमल समूला कावा नाम श्री रंग तुला। अब षोडश ये संस्कृत का शब्द है। षोडश कहते हैं 16 को। यहां पर एक कमल है जो जिसमें माई का वास है, शेरा वाली का अविद्या कहते हैं जिसे, उसका वहां पर दूसरे रूप में रहती है। तो इसके 16 पंखड़ी है उस कमल का। तावा षोडश। अब सुन ऊपर षोडश कमल समूला, षोडश यानी 16 पंखड़ियों का कमल है। तावा नाम श्री रंग तुला, वहां पर श्रीयम नाम का जाप आपने करना है, वो भी गुरु से लेकर, यानी वो गुरु हो गए और पार्वती उनका शिष्या, अब शिष्या के रूप में वो अपनी सेविका को समझा रहे हैं। दो दल कमल प्रेखो जाना ब्रह्म रंद्र की घाटी जाना। आगे जाके दो दल का कमल त्रिकुटी कमल में है। बंकापुर बंका है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ ना पग डगरी। घाट बाट नहीं तासे के अवगत नगर निदान, सतगुरु के ऊपर तप से पहुंचे कोई संत सुजान। के अब यहां से ब्रह्मरंद्र को पार करना है। ब्रह्मरंद्र को पार करके आगे एक शिव का लिंग है, ये नहीं पत्थर का, ये जो लिंग की परिभाषा यहां बना रखी है कति अनजान लोगों ने गुमराह कर रखी। वहां पर एक स्तंभ है, लिंग कहते हैं इसको खंभे को, और वो यानी उससे तेज पुंज से है, एक इतना चमक प्रकाश का इतना लंबा वो स्तंभ है वहां पर, उसको शिवलिंग कहते हैं। शिव माने शक्ति का प्रतीक। उस ब्रह्मरंद्र को पार करके ईश्वरी उस निरंजन की शक्ति का वो प्रतीक है वो स्तंभ, जैसे झंडे लाले नारे नारे, ये फलानी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का। वहां पर शिव का लिंग है, लिंग माने वो खंभा बहुत लंबा और वो बहुत चमक वाला तेज का है, प्रकाश में है। कहते हैं उसके बाद वो शिव के लिंग को पार करके जब आपने निरंजन के लोक में जाना है, और ये शिवलिंग और बना रहे बोड़ी बुरी चाड़ा मूर्ति बना लिया, उसकी परिभाषा सुना दिया शर्मा है। तो वो लोग साधक नहीं थे जिन्होंने ये गुमराह कर दिया लोगों ने, उनकी अपनी अंतःकरण में कोई जगह नहीं बनी, परमात्मा को ढूंढा नहीं, बस सुना ऊपर तय शिवलिंग देखा मेरा के बना दिया। और जटा कहते हैं भगवान शिव की जटा में गंगा थी, जटा इन बालों में नहीं थी। वहां पर एक डैम बहुत बड़ा तालाब है भगवान शिव की ऊपर प्रति आखिरी शिव के लोक की सबसे ऊंचली स्थान पर, सबसे मतलब जैसे अपना हिमालय पर वो सबसे ऊंचा है, और वहां पर कोई ऐसी स्थिति बने तो उसको जटा कुंड कहते हैं। जटा कुंड, कुंड माने जोड़ तालाब। वहां का कुंड इतना लंबा चौड़ा है कि सारी पृथ्वी आ जा और ये समुन्द्र भी उसका मां समा जा। वो भगवान शिव का वहां जटा कुंड है, उसमें कहते हैं अमर लोक तय आई थी वह गंगा, और शिव के विष्णु के लोक में आई, विष्णु के लोक तय शिव के लोक में आई। शिव के लोक में जब वो इतनी धार पड़ी कि 6 महीने तक वो उस कुंड को भर नहीं पाई, इतनी जोर की धार भी उस गंगा की कहते हैं वो शिव के उस कुंड को नहीं भर पाई, इसलिए वह गंगा 6 महीने तक शिव की जटा कुंड में रही। और ये के दिखाऊं है ऊपर महाराज भगवान शिव का बना दी जटा वो बाल से, और उसमें एक माता का मुंह बनाकर घर की तस्वीर से कम में बना दे अनजान लोगों को बहकान खातिर, और उसमें बोला मुंह में का पानी निकलता दिखे वह जटा कुंड होगी, बोला गंगा आएगी ऐ तरह बोला। अब ये राजी होकर उस चित्र ने लाए बैठे हम ना हंसी आवे। तो इस प्रकार वो उस जटा जब वहां से भर गया जटा कुंड और फिर वो शिव के धाम से नीचे सुमेरु पर्वत पर गिरती है, वहां से वो गुप्त होती है, अंतर ध्यान होती है शिव शक्ति तय, और फिर ये आकर के हिमालय के अंदर प्रवेश करती है नीचे और वहां से फिर फूट कर गंगा बाहर आती है। ऐसा गरीबदास जी ने दाना दाना गिन रखा, ये परमात्मा के स्वयं, इनसे कोई पृथ्वी का ब्रह्मंड का एक कण भी इससे खाली नहीं है, आप कोई ज्ञान इससे प्राप्त कर सकते हो, जो कि शास्त्र नहीं दे सकते, वेद नहीं बता पाए, वो बंदी छोड़ भगवान ने स्वयं आकर बताया। बंकापुर बंकी है नगरी घाट बाट कुछ पंथ न डगरी, ग्रीब घाट बाट नहीं तासे के अवगत नगर निधान, सतगुरु के प्रताप से कोई पहुंचे संत सुजान। अपना बताओ कि मारे वाले रास्ते का दिन बेरम ना पट है, ये तो संसार कमल तई का भेद आपको दे रहा हूं। त्रिकुटी ऊपर महल हमारा योजन एक सेंस विस्तार, अब त्रिकुटी से स्थान शुरू होते हैं हमारे योगी और विष्णु, जो क्योंकि विष्णु तक के साधक तो विष्णु कमल बनाएंगे, भगवान विष्णु के पास पहुंच जाएंगे, जिन्होंने विष्णु कमल की साधना की है विष्णु लोक में चले जाएंगे, इनको भी पार करके जो योगी पुरुष उस निरंजन के लोक में चले जाते हैं। यहां पर इस चोटी जो हमारी बनी होती है ये प्रतीक है उसका, ये चोटी हुई नहीं रखा करते, पहला एक ध्यान लगाते थे कि इस ये आडिया जो है ये जोड़ सा है, इसके नीचे यहां पर इतने स्थान में 1000 ज्योति हैं, योगीजन केवल वहां तक जाते हैं और उसको देख कर 1000 झिलमिल झिलमिल को ये न सोचने वाले भगवान पा लिया, और फिर अपने उनको क्या करता है जिसने वो उपलब्धि कर ली, अब जैसे खिलाड़ी खेल जीत के उनको शील्ड दे दी, तो वो निरंजन जो वहां तक पहुंच जाता है उनको ब्रह्मलोक में भेज देता है, और ब्रह्मलोक में वो कई 1000 युगों तक रहते हैं। ब्रह्मलोक में केवल वही प्राणी जा सकते हैं जिन्होंने वो साधना की है, बाकी के उसको देख भी नहीं सकते ब्रह्मलोक को, ऐसा गुप्त है। तो इसलिए जो प्राणी उस ब्रह्मलोक में चले गए उनको हमने यहां के संतों ने ब्रह्मलीन मान लिया, महाराज के ब्रह्मलीन नहीं है, उड़त और ज्यादा मौज है उनकी, उनका बहुत सुंदर शरीर मिलता है और वहां पर सारे ठाठ उनको हो जाते हैं और वो पूर्णक्षीण होने के बाद वो प्राणी भी फिर मृतमंडल में आ जाते हैं। चरकुटी ऊपर महल हमारा योजन एक सेंस विस्तारा, जाम बसे निरंजन योगी खावन पीवे सबर सबोगी, प्रासक्ति जाकी है रानी संख कल्प युग अकल बिहानी, तामा बाजे अनहद नादम शब्द न सवाल नहीं विदान बादम, रास विलास होत तिष्ठोरा जहां तुम देखो देवी गौरा। कहते हैं उस भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मलोक के अंदर ये ठाठ हो रहे हैं, ये मौज हो रही है। 900000 पात्र मल अखाड़ा कोट उर्वशी करें सिंगारा, वहां पर इतने नाच गाने हैं करोड़ों उर्वशी, एक उर्वशी की सुंदरता का वर्णन अगर इस पृथ्वी पर कंपैरिजन करें कोई औरत नहीं है, वो पासिंग भी नहीं, यहां की औरतें एक आम उर्वशी के समान जो उनकी सुंदरता उनकी बनावट है। और कहते हैं कोट उर्वशी जहां करें सिंगारा, ये ऋषिजन ये योगीजन वहां मौज मारा अपनी जाकर, इस काल ने ऐसा बेकार रखा इस प्राणी को कि जो कति तगड़ा साधक होगा वो बढ़िया स्थान भेज दिया, अच्छे प्रकार का होटल दे दिया, वो अपने पुण्य खा के यू फिर अपना उल्टा ही इस मृत मंडल में धक्के खाओ। कोट कोट बैकुंठ विलासा सोतम गौरी देख तमाशा, करोड़ करोड़ बैकुंठों जितना स्वर्ग उस ब्रह्म लोक में है निरंजन के लोक में, कोट कोट बैकुंठ विलासा, विलास माने आनंद, सोतम गौरी देख तमाशा, एक श्रृंग स्वर्ग को जाई वर पर कुछ कीमत नाई, इन मत एक रास्ता कहती है स्वर्ग में जा रहा है और एक जो है निचले लोकों में आ रहा है, और भी बहुत रास्ते हैं जो कि कुछ ऐसे अंदर सुराग हैं। किरकुटी के ऊपर जाकर एक ऐसा बिल्कुल बहुत ही छोटा सा जैसे गोला होता खोपा और खोपे को आधा काट दे और पर इसका आकार बहुत छोटा हो जा इतना को और वो इस आकार का है आधा, ऐसी स्थिति है वहां पर त्रिकुटी को पार करते इसकी, और उसमें ऐसे बारीक बारीक सुराख हैं बहुत गणे। अब वो खुलते हैं मंत्र तय, जिसने शिव का मंत्र कर रखा है तो उस त्रिकुटी से वो वापस आकर शिवलोक में वास ले लेता है। जिसने भगवान विष्णु की साधना करती है तो विष्णु उस मंत्र के प्रभाव तय वो सुराख खुल जाता है, विष्णु लोक में आकर वास ले लेता है। और जिसने वैसे कॉमन साधना कर रखी उसने वैसे सीधा ठाकर निरंजन अपने कर्म अनुसार स्वर्ग कुछ समय के लिए दे देता है। तो एक मंत्र जो बंदी छोड़ देते हैं उस मंत्र से वो हमारा वो मार्ग खुलता है जो हमने ऊपर जाना है, वो नहीं खुलेंगे ना ब्रह्मा का ना विष्णु ना शिव का और ना निरंजन वाला, हमारा रास्ता वो खुलेगा जिसमें हमने जाना से। महाराज के सतगुरु खोल रहे बदर कपाटा, दास गरीब मेर सतगुर की खोल रहे बदर कवाड़ी, वहां पर एक ऐसी खतरनाक इतना गजब वो ताला लगा हुआ, यानी वो बंद है सुराख, ये इस नाम बिना नहीं खुले, ना शिव के खुले ना विष्णु जी की साधना थे और ना ब्रह्मा की ना निरंजन की, उस पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की साधना से ये हमारे खुलेंगे। कोट कोट बैकुंठ विलासा सोतम गौरी देख तमाशा, एक सिरंग सुरग को जाही वार पार कुछ कीमत नाही, कोट कोट सूरज प्रकाशा सूक्ष्म द्वारे पीओ श्वासा। सुष्मण ये इला ये पिंगला और ये दोनों नाड़ी जब अंदर जाकर के एक स्थान पर एक हो जाती है और वहां पर जब होती है जब ये दोनों अपना काम करना बंद कर देती हैं फिर वो तीसरी शुरू हो जाती है, उसको सुष्मणा कहते हैं। सुष्मणा द्वारे पीओ श्वासा यानी सांस से उसको खोलो। तापर जटा कुंडली कहिए सुन गौरी हम बाणी लइए, पुंज रूप एक पुन दर्शाऊं जटा कुंडली में ले जाऊं, जटा कुंडली धाम हमारा शंख पदम झिलमिल उजियारा। अब ये कहते हैं कि मैं जब यहां से इस कैलाश पर्वत से निकल जाता हूं ना, उस जटा कुंडली पर जाकर अपना विश्राम करता हूं, ना वहां गण जा सकते और कोई नहीं जा सकते, तो मैं वहां गुप्त रूप से जटा कुंडली बहुत ऊंचे पर है, शिवलोक का सबसे आखिरी स्थान है वो, कि सुन गौरी मेरा जो असली स्थान मेरा वहां पर है जहां मैं साधना करता हूं, बैठता हूं उस किनारे पर उस तालाब के किनारे पर। जटा कुंडली धाम हमारा शंख पदम झिलमिल उजियारा, सोलह शंख सिरंग अपारा जा पर एक कलश निर्धारा, जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई मूल उचार शब्द गौराही, जानाद नाग दोन बूटी विस्तारा सुरत संजीवन बड़ दरबारा, सुरत संजीवन लाई ये सिंध शब्द के माही, योनी संकट मोक्ष होए बोर न आवे जाई, सुरत शब्द में लाग गए डोरी ताते अमर कच्छ भई गौरी। ये सारा वर्णन दे रखा है, ये सारा सुनाने की आवश्यकता नहीं, बहुत गहराई की बातें हैं, वो आपके समझ में भी कोई ना आवे। तो यहां कहते हैं इस प्रकार शिवजी ने उस पार्वती को वो मार्ग दर्शाया, अर्थात अमर कच्छ भई गौरी, अमर इस शरीर का उसका शरीर अमर हो गया, अब वो इतना नहीं मरेगी जब तक पार्वती शिव के साथ रहेगी, नहीं मरेगी जब तक शिव नहीं मरेंगे। संख असंख्यो जन्म पूर्व ले गंध अंड तन काया भूले, संख असंख्यो जन्म पूर्व ले और गंदा अंडा तन काया भूले, जोग संजोग मिला जब आई और शिव गिरजा को कथा सुनाई। कोई संयोग मिला उसका कथा सुनाना हुआ, उसका अंडे के गंदे रूप में उस जीव का उस प्राणी का उसमें प्रवेश होना हुआ। गृह कल्प करी शिव पुरुष को गौरी सुनाया ज्ञान, आशा तृष्णा थिर हुई ये अमर कच्छ परमान, सुनत ज्ञान अनभय पद वाणी। अब सुखदेव कैसे उत्पन्न हुआ, सुनत ज्ञान अनभय पद वाणी अंड फूट चेतन भय प्राणी। अब वो अनभय वो ज्ञान इतना उस परम पिता परमात्मा यानी भगवान शिव की मूठ है, वो आवाज वो चर्चा सुनकर भगवान सत्संग की, वो जो गंदा अंडा था वो फूट गया प्रफुल्लित होकर, और उसमें के हुआ कि वो तोते का बच्चा बन गया, चीकला बन गया। कोट कोट जन्म के कर्मा दमन किए चीने नित धर्मा, यानी संत के सत्संग तय कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कुछ कर्म सत्संग से निष्क्रिय हो जाते हैं, कहते हैं वो कर्म खत्म हुए कुछ कर्म होते हैं जो सत्संग के माध्यम से समाप्त होते हैं, जिससे उसका वो शरीर प्रफुल्लित हो गया और उसमें वो बच्चा बन गया। ऐसा ज्ञान अगम गौराया, परजामी पे चेतन हो आया। परजामी, अब परजामी ने के समझे, परजामी पर कहे हैं पांख, और जामी माने उत्पन्न हुई, उस तोते के बच्चे के वो पर उत्पन्न होगी, और चेतन यानी वो फड़फड़ी लाग गया लेण, चेतन हो गया यानी उसमें वो प्राण प्रफुल्लित हो गए, प्रभावी हो गए, वो जीवित हो गया। नो सोच लो, ऐसा ज्ञान अगम गौर आया, परजामी चेतन हो आया। चेतन होकर भरा हूं कारा, शिव योगी मन माही संवारा। अब चेतन होके और फिर वो ओंकार्य वर्ण लग गया। गिरजा बही ज्ञान गलताना, पंछी कौन वृक्ष गौरान्य। अब भगवान शिव ने सोचा, पार्वती तो दान मगन हो रही, अरे पक्षी, यो आवाज पक्षी की आवर न्यो का। हाँ जी, शिव योगी जब भया, गिरजा वही ज्ञान गलताना, पंछी कौन वृक्ष गौरान्य। अजर नाम चिन्ह पद भारी, उड़ गया फूटा पंख पसारी। जब उसने देखा ना शिव जी ने आंख लाल कर ली, अर्थो मारा है, गुस्सा हो गया तो भाग लिया ऊपर से उड़कर, और पीछे भगवान शिव जी आगे वो तोता अपनी सिद्धि से वो उड़ गए। शिव योगी जद भया चचाना, पंछी सुना हमारा ज्ञाना। चचाना यानी क्रोधित हो गए, चिड़चिड़ापन आ गया उसमें, अगिस ने चाला पाट दिया, मेरे ज्ञान को सुन लिया। ज्ञान का चोर जान ना पावे, पक्षी तन तज उधर समावे। ज्ञान का चोर जान नहीं पावे और पंखी तन तज उस तोते के शरीर को छोड़कर और उधर समावे। अब ये इतनी गहरी वाणी है बंदी छोड़ने, इतने से में और इतनी बात कह दी। वो सुखदेव अपने तोते के शरीर को त्याग के तन तज पंखी, पंखी पक्षी तन तज उधर समावे, यानी उस जमाई ली ना जब वेद व्यास की पत्नी ने, उस माई ने, तो वो उस उधर यानी पेट में चला गया। ब्रह्मा विष्णु जानधर आए, शिव योगी को बेग बुलाए। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने बुला लिए। आनंद वचन कहे त्रिपारी, सुन हे वचन व्यास की नारी। तीनों देवता त्रिपुरारी, तीन लोक के भगवान और व्यास की पत्नी से कहते हैं, यहां एक चोर हमारा आया, तुमरे उधर आन समाया, कि एक हमारा ज्ञान चुरा के और तेरे पेट में आ गया। माता बोले बाणी निकी, हमको खबर नहीं तनजी की। अगजी मन ने कोई नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं है। द्वादश वर्ष रहे तन माही, लगी समाधि ध्यान धुनता ही। 12 वर्ष तक और मां के गर्भ में भी इतना आनंद हो गया सत्संग के सुनता उसके मन में, वो नौतत के शरीर में, कि मां के पेट में भी ध्यान लाए बैठा रहा खूब खागड़, और बार आनजी ये ना करे तो क्या कहा कि द्वादश वर्ष रहे तन माई, लगी समाधि ध्यान धुनता ही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सुन पंछी तू ज्ञान परेवा। बाहर आओ वचन सुन मोही, तुम्हारा नाश कबू ना होई। ने बोले तुम बाहर आ जाए, तुम रखो ना, हम तो डरावा थे तेरे को। तेने बोला नू ना हूं। तब गरीब शिव को सुखदेव से कहा, मानो वचन हमारे, उत्पत्ति पर ले मेटे हूं चरण कमर दीदार। बोले पक्षी वचन उचारी, माता को सुख देने भारी। माता कहे पुत्र सुखदेवा, गर्भयोनी मत आवो बेवा। बोले सुखदेव विभल बाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी। कोट कोट भुगती चौरासी, काटो फंद पुरुष अविनाशी। ने बोला मन तो बहुत गुना दुख पा लिया, पर ईव जब निकलूंगा जब वचन भर लोगे। तीनों देवा जब थम भी माया, गर्भ उधर से बाहर आया। तीनों देवताओं ने ये माया जो जीव को ब्रह्माए बैठी है यहां पर, ये बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, वह माया रोग की। तीनों देवा थम भी माया, गर्भ उधर से बाहर आया। ओल नाल कर कमर मुतंगा, अर्चला सुखदेव बणखंड संगा। अपनी ओर नाल ने कंधे पर धरके, 12 साल का बालक ज्यादा हूं तगड़ा हो जैसे। अब ये विचार करने की बात है कि जिसमें वो शक्ति आ जाती है, वो जब मां से बाहर आया बिल्कुल सूक्ष्म होकर, और बाहर आते ही अपना एकदम वही रूप जो 12 वर्ष की आयु का था वो प्राप्त कर लिया। इसी का नाम सिद्धि होती है। एक सिद्धि सूक्ष्म हो जाए लघु, कति छोटा हो जाए, अरमान बेरा बिना पट्टा किस में गर्भ से बाहर आ गया और बाहर आकर अपना स्वरूप बना लिया। तो कहते हैं और नाल कर कमर मुतंगा, अपने कंधे पर घेर के ओ दास वो दास, और नाल कस कमर मतंगा चाला सुखदेव बणखंड संगा, बणखंड में चला गया। पुत्र ब्यास ब्यास कर टेरे माया मोक चूनी मेरे, कौन पुत्र को पिता कहावे शब्द स्वरूप रहे नरदावे। अब वो चला ना लड़का, और लड़का उनकी खुशी घड़ी मना कर, तो ब्यास जी उस लड़के का पीछा भाग लिया, पुत्र पुत्र जरा बात सुनो, अरे मुंह तो दिखा दे निर्भाग, अब छोड़ पिताजी। सुखदेव बोला कि कौन ब्यास जी, कौन किसका पुत्र है, ये तो बनावटी बातें हैं ना, मेरा तू मेरा पुत्र कितनी बार हो लिया और मैं तेरा पुत्र हो लिया। और यहां से भाग गया, कहते हैं बणखंड में जाकर वहां चला गया दूर। पुत्र पुत्र ब्यास कर टेरे माया मोह कछु नी मेरे, ओ पुत्र पुत्र कह और नो कब सारा बेरा है, क्या नूड़ जाओ पिताजी, ओ ब्यास जी अब मैं तेरा पुत्र को न, कौन पुत्र को पिता कहावे, कौन पुत्र कौन बाप है, और शब्द स्वरूप रहे निर्दावे। पांच तत् गुण तीन समाना, पान पान में पद गलताना, ब्यास पुत्र से कीने प्यारा सुखदेव भरा शब्द हंकारा। और वो पुत्र का प्रेम बाप में तो उमड़कावे और वो एक नहीं सुने, वो वहां से निकल गया। खोद न पाया ब्यास गुसाई, कलप करी उल्टे घरे आई, वहां से वो अंतर ध्यान हो गया सुखदेव, आगे जाके प्रगट हो गया। और वेद व्यासी जब ना देखा कि मैं अपना वापस आ गया, मुंह लटका के खोज न पाया ब्यास गुसाई, कलप करी उल्टे घर आई, आगे जाए भय पर चंडा जैसे नदी अठारह गंडा, स्वर्णर मुनि जन गंधर्व ज्ञानी सबसे ऊंचा है अभिमानी, अदर विमान चले मन रूपा गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा, इंद्री पांच पच्चीसों सादी गर्भ योगेश्वर योगी बादी। अब गरीबदास जी इन कथाओं सुवा द्वारा अब आगे कितना बढ़िया प्रमाण दे रहे हैं। अब उसने या अर्दी की गांठ पागी सुखदेव ने, अब तू अमर हो गया भाई तेरे बराबर कोई भी कोई ना, और अब तुझे ना गुरु की आवश्यकता और ना कोई साधना की। उस पिछले उसकी करनी से और शिव भगवान की उस बाणी से उसमें इतनी शक्ति आ गई, आकाश में उड़ जाओ और बैटरी चार्ज होगी। अब नौके हैं कि स्वर्णर मुनिगण गंधर्व ज्ञानी और सबसे ऊंचा है अभिमानी, किससे इतनी बात करे, एक ब बोलने सो बतावे, अदर विमान चले मन रूप आकाश मुड़ जावे, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा, इंद्री पांच पच्चीसों सादी गर्भ योगेश्वर जोगी वादी। नो बोला मैं सादी कौन करवाऊं, और हमने तो अपनी सारी इंद्रियों को काबू कर लिया, अब ये अभिमान फेर खा गया उसको। अब बंदी छोड़ महाराज, हर पॉइंट से हमारे को निर्मल करें सवाई, देखो अभिमान धन का हो जा, अभिमान भक्ति का हो जा, माया का हो जाओ, राज का हो जाओ या बच्चा का हो जाओ, आखिर में होगा नुकसान ही। गरीब बादी योगी बादे करे बेचरा तीनू लोक, बादी बादी कहते हैं बाद विवाद करने वाला, किसी की ना सुने अपनी गाव सारे जहां पर भी जावे, सतगुरु जनक विदेही बिन वो पावत ना ही मोक्ष। अब यहां पर गुरु की महिमा को महाराज जी फिर दृढ़ावस है, देखो पीछे तो नाम कैसे लेना चाहिए कि नाम लेने से पहले हमारी भावना उस संत के प्रति कितनी कोमल होनी चाहिए, और फिर तुम उस तड़प के साथ नाम लेते हो तो वो नाम अंदर काम करता है। अंदर नाम चला भी गया तो फिर प्रफुल्लित कैसे होगा, वो आपकी भक्ति रूपी पौधा पूरा कैसे होगा, उसमें फिर आगे बतावे कि ऐसे फिर आपकी रहनी करनी चाहिए। गरीबादी योगी बादे कहरे बिचरा तीनू लोके, सतगुरु जनक विदेही बिना यो पावत नाही मोक्ष। अब क्या हुआ, गरीबदासी हर प्रमाण को ऐसा दृढ़ता पूर्वक करते हैं, कहते हैं एक बार इसने इतना कंट्रोल कर लिया अपने मन पे इंद्रियों पे सुखदेव ने, एक बार इसके पास एक अप्सरा आती है और राजा जनक ने उसकी परीक्षार्थ भेजी कि इसका पता करो, इसमें भक्ति भाव है या वैसे ही अपने इंद्रियों को मोह से बैठा है। तो लड़की वहां जाती है, वो अप्सरा, तो सुखदेव उसको हाथ जोड़ देता है और बेटी और बहन कहकर उसको वापस भेज देता है। अब उसको और ज्यादा अभिमान हो गया कि ईब तेरे बराबर कोई नहीं रहा, तू मार खा ही नहीं सकता। तो महाराज कहते हैं उसमें वो लड़की जब गई थी, वो अप्सरा, वो अभिमान करके गई थी कि मैं तो सुखदेव जैसे तीन से देखूं और ऐसे उसकी बिरान माटी करके आऊंगी कि वो जिंदगी भर योग का नाम भी ना लेगा। क्यों ये उड़ा ये मसले इनकी ऊपर में इंद्र लोक में ये हिसाब किताब लाए जाए, इंद्र कौन सा ऋषि गणित तपस्या करता है और फिर वह उसने शाबाशी कौन सी जाओगी यहां से अप्सरा और उसके तप को खंड करके आओगी, उसको वैसे यहां सुख दूंगा, उसको न्यारा राज दे दूंगा। तो वहां पर उनको लालच देखवा भेज देता है और वो उन बेचारों को खंड कर जाते हैं। क्यों? अब नरेंद्र ने यह पक्का कर रखा है कि कोई प्राणी यहां से निकल नहीं देना। हम तो फंसा दिए इस काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के अंदर जीव जीव बनाकर, हमारे पर तो ये नून मिर्च लकड़ी ये सूत मनानती सारी उम्र, और कोई इसने त्याग कर निकल भी जा से तो वहां साधना करो, साधना फिर इंद्र को सुस्कार दे, अब तेरी गद्दी जाओगी। अब उसने फिर वो आंकड़े सारा दिन फिट करने रख कि किसने भेजू और कौन वहां उसका सत तोड़ सकता है, किस प्रकार क्या हो सकता है। तो इस प्रकार महाराज जी कहें यो सब अखेड़ा भाई, यहां तो केवल हम काट सकें और किससे के बस का कोई ना। तो यहां क्या करें, अहु अग्नि बंधन बहु बारी, सुखदेव जी त्याहुरम बाहारी। उसे औरत में अभिमान हुआ था अप्सरा में, वो वहां हार गई, वहां पर सुखदेव जीत गया, क्यों वो अभिमान वसाई थी। अब आगे क्या कहते हैं, अहु अग्नि हृदय प्रकाशा, ज्ञान धान जरे जूंघासा, कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा, जा अहिल्या की न्यासंगा। अहु अग्नि के ते बौराए, सुखदेव योगी इंद्र डिगाए, सुखदेव को तो तन मन, सुखदेव कह तो मान घनेरा, सुरपति लुब्ध काम गल घेरा, सुखदेव कल्प वृक्ष की छाई, जनक विदेही करे गुरु नाही। अब क्या कहते हैं, एक बार सुखदेव जी स्वर्ग में चले जाते हैं और जब वो स्वर्ग में गए तो पारखत जो सामने स्वर्ग के पहरेदार होते हैं वो सबसे पहले ये पूछते हैं, भाई एक बात बताओ कहां से आए हो। वो अपना परिचय देता है, मृतमंडल से आया हूं, आपके पास वो नाम गुरु का मंत्र है जैसे पासपोर्ट होता है, फिर वो है बताओ कौन है तुम्हारा गुरु फलाना, फिर वो अपनी लिस्ट काट देंगे वहां के जहां पर उसने जाना है, उस लिस्ट में देखेंगे कि वो गुरु को आदेश है नाम देने का कि नहीं है, तो वहां नाम नहीं पाएगा उस गुरु का तो सीधा नरक में दोनों को भाग जाए यहां से। गुरु भी गुरु तो है सीधा नरक में जब उसको आदेश नहीं वो नाम देता है, और जिसके पास नाम जमाए नहीं ले रखा वो भी नहीं जा सकता। तो सुखदेव जी वहां पहुंचे तो पार्षदों ने रोक दिया कि कहां जा रहे हो ऋषि जी, कि भैया स्वर्ग जा रहा हूं, और कैसे ना जा करते स्वर्ग में, और कैसे आपका गुरु कौन है, कि गुरु की क्या आवश्यकता है, कि गुरु बिना स्वर्ग में कोई जा नहीं सकता, प्रथम आपका गुरु होना चाहिए। कहने लगे किसने कहा, कि हमारे को आदेश है भगवान विष्णु के। तो वो बोला भाई विष्णु जी ने बुलाओ, तो देख मूर्ख अनजानपना कितना करता, भगवान ने कह बुलाओ, एक तो संदेशा भेजे कि भाई ऐसे कहो मृतमंडल से सुखदेव जी आए हैं आपसे मिलना चाहो महाराज जी कब दर्शन देंगे, अरे कहे विष्णु जी को बुलाओ। तो वो जाकर के पारखत भगवान विष्णु को संदेशा देते हैं, ज्यों का त्यों कि मृतमंडल से एक ऋषि आया से सुखदेव नाम बतावे, कहता है कि मेरे पास कोई गुरुनामा नहीं है, मैं स्वर्ग में रहूंगा, और हमने कहा तो कहते विष्णु जी को बुलाओ। अब कहते भाई चलो मैं आऊं, भगवान विष्णु बड़े सतोगुणी हैं, वो काली नहीं मानते इन बातें की, अब चलो मैं भी आ रहा हूं, ऋषि जी को कहो सामने अभी ठहरे वहीं पर। विष्णु जी आ जाते हैं और सुखदेव बड़ा राजी हुआ कि महाराज जी बड़े खुश होंगे, इन्हों देख के वाह भाई सुखदेव तेने कमाल कर दिया और स्वर्ग में पहुंच गया, बड़ी साधना करी। विष्णु जी कहने लगे सुखदेव जी यहां के काम आए, किस लिए आए थे यहां पर। अब इतनी बात सुनते हैं उसका तो पानी गड़ों पड़ गया, उम्मीद तन्यों थी कि महाराज जी गणे प्रसन्न होंगे और उसके विपरीत ऐसा जवाब सुनकर ने बोला जी मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूं। अग्नियों नहीं रहा करते स्वर्ग में, आपका गुरु कौन है? कोई ना जी, फिर गुरु बिना यहां पर कोई स्थान नहीं है भाई, जाइए आप। तो महाराज जी एक समस्या हो रहा है कि मेरे सामने, क्या कि मृत मंडल में मेरे समान कोई भी संत नहीं है जिसको मैं गुरु बनाऊं। विष्णु जी कहने लगे सुखदेव यह बीमारी और पाल दी तूने, यो अभिमान और कर लिया कि तेरे समान कोई नहीं, तू तो उन संता के पासिंग भी नहीं है, और जाके उपदेश ले और फिर यहां आना। वो किससे उपदेश लू महाराज जी? कि राजा जनक से, राजा जनक से, राजा जनक के 10,000 रानी और गृहस्थी और सुखदेव ने कहा मन स्त्री का मुंह ना, सुखदेव बोले ज्ञान विवेका और मन स्त्री का मुख नहीं देखा, और राजा जनक गृहस्थी भाई और क्यों कर शीश ने माऊ जाई। इब यो अहंकार और पाक गया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी और वो एक गृहस्थी आदमी, अरे उसने क्यों कर नमस्कार करूंगा। वहां से आके इंद्र लोक में आ गया। इंद्र लोक में जब वो पहुंचता उसका मुंह लटक्या हुआ, चेहरा उतरा हुआ, सारे ऋषि इकट्ठे हुए वहां के देवलोक, कहने लगे महात्मा जी की बात है आज आपका चेहरा खिला नहीं। वो कहने लगा भाई के बताऊं आज तो बात बिगड़ गई। कैसे बिगड़ी? कि मैं गया था विष्णु लोक में, विष्णु जी से मैं स्वर्ग में रहना चाहा और भगवान ने बोले भाई गुरु बिना यहां पर रह नहीं सकता। तो वो सारे देव कहने लगे या गलती भी कर रखी आपने, अब क्या आपने गुरु नहीं बनाया? अग ना हमें तो गुरु बनाया कोने ऐत करेगी, हम तो आपको इतना विद्वान समझते थे, आपसे कथाएं सुना करते थे इतनी लंबी लंबी। और सुखदेव जी यह गलती कैसे करी आपने? अग भाई चलो वो बात होगी, पर ईव गुरु बनाऊं किसको? कि भगवान ने के सलाह दी, उन्हें यह कहा कि राजा जनक से नाम ले ले। राजा जनक भाई एक गृहस्थी आदमी और 10,000 रहनी उसके, क्यों कर नाम लो? मेरे बात समझ में नहीं आती, या तो अलगते तला बात उतरती है कोने, या तो मेरी समझ से कति बार बात होगी। तो कागभूषण कहने लगा सुखदेव कुछ ना दे रहा है ना बात में। कागभूषण ने अपनी कथा सुनाई कि मैंने भी एक बार गुरु के प्रति अभिमान किया था और मेरी वह दुर्गति हुई थी भगत जी, और तू तो बिना बनाए कर रहा तेरी तक कितने भी ठिकाना कोई ना। सब संतों ने एक ही बात कही कि ऋषि जी तेरी तो बिरान माटी चौकस होगी, या 4 दिन बैटरी चार्ज हो रही है और जिस दिन तेरी यह भक्ति खत्म हो जाएगी तेरा कुत्ते की तू निम जाएगा। हम तो तेने बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, अब एक बात कहे दूसरा वही कर तीसरा फिर वह कहे, और सब शास्त्र प्रमाण ने आखिर में उसने यह बात माननी पड़ी। जब तांडी पाक के गया था अपने घर से, मैं पिताजी का मुंह बिना देखूं, फिर वह स्वयं अपने पिताजी सुखदेव के पास आता है। अभिमान नहीं करा डमाड़ा सा भी, ऊ खिसकना अपना खिसक लो, ये अभिमान नहीं करना चाहिए आके। और कहने लगे पुत्र आज क्यों कर दर्शन दिए? अब पिताजी मेरे से गलती होगी, उस दिन मैंने अभिमान करके आपसे बहुत बुरी बोली, यानी गलत कह दी। जब पिताजी 2 मिनट आपसे बात कर लें तो आपका मन राजी हो जाओ, मेरे मन की श्रद्धा नो की नो थी, पर यहां मेरे से गलती होगी। अब मैं स्वर्ग गया था और स्वर्ग में भगवान विष्णु ने मुझे रहने नहीं दिया। क्या कहा? किन्नो बोला गुरु बना लो, और व्यास जी कहने लगे फूटे भाग तेरे, तने गुरु नहीं बनाया अभी तक, आधी उम्र खो दी। अकना जी मैं तो गुरु कौन बनाया तेरा, तू क्या कह सुखदेव रहे वो अभी मैं, तू क्या ज्ञान था फिर तेरे अंदर, ये इतने मोटे मोटे शास्त्र ये वैसे लिख रखे संतों ने, तो गुरु बना। कहने लगे पिताजी एक चाड़ा और हो गया, वो क्या? एक कमाल हो गया कि मैं कैसे गुरु बनाऊं, किसको बनाऊं, कि ये तू देख भाई किसने बनाए। अब भगवान विष्णु ने कहा है कि राजा जनक से नाम ले ले, राजा जनक का 10,000 रानी और मन स्त्री का मुंह भी ना देख लिया ताई ने बोला कुछ ना दे रहा बात गौड़ी बूझ, जाकर पैर पकड़ लिया अपने और पीछा छुटवा ले, राजा जनक के बराबर आज इस पृथ्वी पर संत नहीं है। अब जब उसने कोई और चारा ना देखा तो राजा जनक के दरबार में चला गया। राजा जनक भी जाना था कि योगी पुरुष और गृहस्थी के बारे में आया सा कोई खास बात है, पर इसमें ईबी भी थोड़ी सी मरोड़ रह रही है। महाराज ने आसन दे दिया, आसन पर बैठ गया। नाम लेन जा और गदेला चाव गुरु ते आधे बिरयान मेटी ताड़े वाली उसकी ऐद होगी भाई। ठह बैठा उस गद्दे पर। महाराज ने सोचा ही भाई वो नाम लेने जोगा होया नहीं से, इसकी और कड़ रह रही है भीतर, कोई आठ सिवा निकालनी पड़ेगी। क्या किया? ने बोला सुखदेव मैं नहा लू भाई, नहा कर आपको ज्ञान दूंगा, उपदेश दूंगा, नाम दूंगा। अग नहा लो महाराज जी। उसके सामने नौकरों से आग बढ़वा के चूल्हा इतना चौड़ा पूरा पतीला धरवा कर लकड़ सूट लगा दिए उसमें गणे और न्यू आग भट बाल दिया और वो पानी इतने बड़े पतीले में न्यू बड़ा खदड़ खदड़ ऐसे बहुत बड़ा उबाल ले रखा। और जो 10,000 में पटरानी थी उस रानी को बुलाया कि आप आओ मैं स्नान कर, हाँ नाव जी मैं आपको स्नान करवाती हूं। उस उबलते पानी में तेनो चढ़ो भरे और न्यू गेरे और फिर लोटा भरन लगी ऐसे गेरे उसको नवाब राजा जनक को। अब राजा जनक कहता कि सुखदेव इधर आइए पुत्र एक बार, मेरे स्नान करने के बाद जो यो पानी इस नाली में जा रहा है गटर में, इसमें बेटा एक बार हाथ दे दे, जब जानो तो बाल ब्रह्मचारी जति है। कहते हैं उठ के नुआंगली देना चाहा, नू इतनी कूद को पिटाओ महाराज जी मेरी तो सारी शरीर जल जाएगा, इसमें हाथ दे दूंगा। ते राजा बिहंस जई जब तारी, हमें स्नान करावे नारी। और क्या ऐसा योग कमाया पूता, और क्या हुआ जो इंद्री धूता, के राजी हो गया मन कंट्रोल इंद्रियों को काबू करें बैठा है। जैसे जीवा लेप नहीं मधुरस कह, इंद्री कर्म लगाओ किसके। अब जीव अपना स्वाद नहीं ले रही, ये मन ले रहा है। अब जीव अपना वो खा लिया शायद, जीव ने आनंद नहीं लिया, ये तो चाम की है, इसके माध्यम से वो अंदर चीज खा रहा है, इंद्री का कोई दोष नहीं है। इंद्री कर्म लगाओ किसके, और जैसे लेप नहीं मधुरस कह। फिर महाराज के चरण पकड़ के सुखदेव ने उपदेश दिया।